दिन भर 23 जनवरी दिन सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। जल्लीकट्टू के मुद्दे पर चेन्नई और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भड़की हिंसा। क्या जल्लीकट्टू सिर्फ एक खेल है या इसके पीछे कोई सामाजिक मानसिकता भी है?
जो पूरा खेल है ये मर्दानगी से जोड़ के देखा गया है, और जब हम साहित्य की तरफ नजर डालते हैं तो कई उल्लेख मिलते हैं जिसमें इस खेल का इस्तेमाल शादी के रिश्ते बनाने के लिए किया जाता है।
छत्तीसगढ़ में फर्जी मुठभेड़ और आदिवासी महिलाओं के साथ यौन प्रताड़ना मामलों को उजागर करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया को बस्तर छोड़कर जाने की धमकी।
माजरा ये है कि पूरा वही अटैक हुआ है, तो मकसद यही था कि हम मुझे यहाँ से हटाएं, अभी हटाएं, अभी अभी, और फिर पुलिस के सामने है, फिर एक दिन से घटे तक ये सब कुछ चलता रहा।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। भारतीय राज्य तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को लेकर विरोध कर रहे लोगों को हटाने के दौरान हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं। पुलिस का कहना है कि मरीना बीच पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस का दावा है कि असामाजिक तत्वों ने हिंसा भड़काने के लिए ये हरकत की है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
चेन्नई में जल्लीकट्टू के मुद्दे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज अचानक हिंसक हो गया जब पुलिस ने मरीना बीच से प्रदर्शनकारियों को हटने के लिए कहा। इस बात से नाराज प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी और उसके बाद कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। दूसरी तरफ विधानसभा में जल्लीकट्टू पर कानून बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है।
विरोध कर रहे लोग जल्लीकट्टू को स्थायी रूप से कानूनी बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संसद में देरी से आम बजट पेश करने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस बात को पुष्ट करने का कोई उदाहरण नहीं है कि बजट के दौरान की गई घोषणा से राज्यों के चुनाव में शामिल हो रहे मतदाताओं के मन पर असर होता है। वकील एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को साल 2016-17 का बजट 1 अप्रैल के बाद पेश करने का निर्देश दे। इसके साथ ही किसी तरह के कार्यक्रम, पैकेज, आर्थिक राहत का ऐलान करने से रोकने की भी मांग की गई थी। इसके पीछे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने की दलील थी। केंद्र सरकार ने साल का बजट समय से पहले 1 फरवरी को पेश करने का फैसला किया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में सीरिया के मुद्दे पर एक शांति वार्ता हो रही है। इसमें शामिल हो रहे सीरियाई सरकार के प्रतिनिधियों के प्रमुख ने विपक्षी दलों की टीम के नेता के भाषण को भड़काऊ कहा है। आर्मी ऑफ इस्लाम के प्रमुख मोहम्मद अलाउश ने सीरियाई सेना और उसके ईरानी सहयोगियों पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। शुरुआती सत्र के बाद संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के राजदूत बशर अल जाफरी ने कहा कि विपक्षी नेता का भाषण बैठक के एजेंडे के अनुरूप नहीं था और उसे बीते महीने लागू हुआ युद्ध विराम कमजोर होगा। उन्होंने कहा,
We had the guarantees from the guarantors that this delegation will behave.
हमें गारंटी देने वालों से गारंटी थी कि ये प्रतिनिधिमंडल अच्छा व्यवहार करेगा। वास्तव में वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो बैठक के प्रावधानों और संदर्भ के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, और इसलिए हर कोई हैरान है। संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के राजदूत बशर अल जाफरी के शब्द। ये पहली बार है कि रूस, तुर्की और ईरान ने इस तरह की बैठक बुलाई है, संयुक्त राष्ट्र ने नहीं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश के एक शख्स को ये पता लगने के बाद कि वो किसी और की जगह उम्रकैद की सजा काट रहा है, जेल से रिहा कर दिया गया है। अक्टूबर 2015 में रिपन अहमद को इकबाल हुसैन बोकुल समझकर जेल में डाल दिया गया। इकबाल हुसैन को हत्या के आरोप में जब उम्रकैद की सजा सुनाई गई तो वो फरार चल रहे थे। रिपन अहमद ने हाल ही में अपनी असली पहचान जाहिर की। इसके बाद हुई जाँच से पता चला कि गलत पहचान बताने के लिए उनको पैसे दिए गए थे। अब उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा। हत्या का दोषी सऊदी अरब भाग गया है। यमन की सरकारी सेना ने कई दिनों की लड़ाई के बाद लाल सागर पर मोखा पोर्ट तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है। हुती विद्रोही यहां से पीछे हट गए हैं। पोर्ट पर कब्जे से सरकारी सेना को विद्रोहियों तक तस्करी के जरिए पहुंचने वाले हथियारों और सामानों को रोकने में मदद मिलेगी। डॉक्टरों के मुताबिक हाल के दिनों में हुई विद्रोहियों और सरकारी सेना की लड़ाई में कम से कम 70 लोग मारे गए हैं। गाम्बिया के नए राष्ट्रपति एडामा बैरो ने बीबीसी से बातचीत में कहा है कि वो देश की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का नाम और चरित्र बदल देंगे। पूर्व राष्ट्रपति याहिया जम्मेह के शासन में एनआईए पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। याहिया जम्मेह ने रविवार को सत्ता छोड़ दी और देश से बाहर चले गए। एडामा बैरो अभी भी पड़ोसी देश सेनेगल में हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। दिन भर का सीधा प्रसारण कार्यक्रम की शुरुआत दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु से, जहां जल्लीकट्टू के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से तनाव की स्थिति रही है। आज चेन्नई और राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस खबर पर और जानकारी के साथ बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
इस तरह की आवाजें आज दिन भर चेन्नई में गूंजती रही। पिछले 7 दिन से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चेन्नई के मरीना समुद्र तट पर चल रहा था, वो अचानक से हिंसक हो गया। मुसीबत तब शुरू हुई जब आज सुबह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से निकलने के लिए कहा। पुलिस ने पहले अपील की, पिछले 6 दिनों से आप एक शानदार तरीके से एक शांतिपूर्ण आंदोलन किए हैं, अब आपकी मांग को सरकार स्वीकार की है, हम दरखास्त करते हैं कि आप प्रदर्शन बंद करें। ये थी एक पुलिस अफसर की अपील। लेकिन प्रदर्शनकारी अपने नए मांग पर अटल रहे कि जल्लीकट्टू के लिए एक स्थायी समाधान की जरूरत है। जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को निकालने की कोशिश की तो झड़प हुई और उसके बाद मामला समुद्र तट से रॉयपेटा और दूसरे इलाकों में फैल गया। बीच के पास का आइस बॉक्स पुलिस स्टेशन को आग लगाई गई और बहुत सारे वाहनों को भी आग लगा दिया गया। बहुत सारे जगहों पर पुलिस लाठीचार्ज की और आंसू गैस भी छोड़ी। तो ये किस लिए हुआ? चेन्नई के ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर एन सत्यमूर्ति कहते हैं,
डेफिनेटली देयर वाज एन एलिमेंट, ए ग्रेट एलिमेंट ऑफ पेंट इमोशन ऑफ पीपल।
एक शांतिपूर्ण आंदोलन को असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। ये थे एन सत्यमूर्ति के शब्द। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल स्टडीज के प्रोफेसर सी लक्ष्मणन कहते हैं,
नो दिस इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हेन द मास ऑफ यूथ एंड सो।
देखिए, जब एक आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं होता है तो समाज विरोधी तत्व के लोग शामिल हो जाते हैं। आज तो हमें सारे नए चेहरे रोड पर दिखने को मिले। स्कूल से वापस होते बच्चे और आम लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची है। ये थे प्रोफेसर लक्ष्मणन के शब्द। प्रदर्शनकारियों को निकालने की जल्दी पुलिस को इसलिए भी है क्योंकि 2 दिन में गणतंत्र दिवस होने वाला है और जगह वही है जहां प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 7 दिन से जो भी हुआ वैसा तस्वीर तमिलनाडु ने इससे पहले नहीं देखी थी, और आज जो हिंसा हुई वैसी हिंसा भी तमिलनाडु में कई वर्षों से नहीं हुई थी। तमिलनाडु एक हफ्ते में बदल गया है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
तमिलनाडु भले ही एक हफ्ते में कुछ बदला लगता है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ बातें हैं जो अभी नहीं बदली हैं। क्या आप जानते हैं कि जल्लीकट्टू सांड को काबू करने का खेल भर नहीं, बल्कि एक समय ऐसा भी था जब इसके जरिए जोड़ियां बनती थी। जी हां, दुल्हन पाने का भी खेल रहा है जल्लीकट्टू। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता वंदना और दिव्या आर्य।
दिव्या, जल्लीकट्टू जैसा कि बहुत ज्यादा उसकी चर्चा हो रही है, तो एक तरह से उसको मर्दों का खेल माना जाता है, सांडों के साथ जैसे वो भिड़ते हैं, तो इसमें औरतों का नजरिया देखा जाए तो वो किस तरह से इसमें जुड़ी रहती हैं?
बहुत ही गहरा रिश्ता वंदना इसमें है औरतों का, क्योंकि ये जो पूरा खेल है ये मर्दानगी से जोड़ के देखा गया है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का इतिहास करीब 1300 साल पुराना है, और जब हम साहित्य की तरफ नज़र डालते हैं तो कई उल्लेख मिलते हैं जिसमें इस खेल का इस्तेमाल शादी के रिश्ते बनाने के लिए किया जाता है। मैंने चेन्नई में स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक हैं नित्यानंद जयरमन, उनसे बात की तो उन्होंने कहा, जैसे हम आज के दौर में मोटरसाइकिल को तेज दौड़ाना, इस तरह की जो चीज़ें मर्द करते हैं औरतों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वैसे ही जल्लीकट्टू की शुरुआत ऐसी हुई
किसी जमाने में
जाहिर तौर पर कि अपनी मर्दानगी साबित की आपने एक सांड से, इस तरह से जो खेल खेला उसमें अपनी मर्दानगी साबित की, और उसके बाद आपको गांव का सबसे उम्दा मर्द माना गया और फिर आपको रिश्ते में औरतों के हाथ मिले।
ये तो बात हुई खेल की, तो क्या इसका जो एक तरह से अक्स है वो फिल्में होती हैं, साहित्य होता है, ये जो पॉपुलर कल्चर होता है उसमें भी देखने को मिलता है?
बिल्कुल, ये उल्लेख सिर्फ साहित्य तक नहीं रुका रहा, बल्कि 1956 में पहली बार एमजी रामचंद्रन, जो AIADMK के पूर्व नेता भी हैं, उन्होंने सबसे पहली बार जल्लीकट्टू को बड़े पर्दे पर उतारा।
और वो बहुत बड़े स्टार थे
और फिर उनकी इस चलन को आगे लेके आए रजनीकांत, और उन्होंने भी जल्लीकट्टू को अपनी कई फिल्मों में दर्शाया। बल्कि उनकी एक फिल्म का मैं नाम लेना चाहूंगी, उसका नाम है मुरत्तू कलई। जिसका मतलब ही है आवारा बदमाश सांड, यानी वो हीरो का एक पूरा जो पर्सनालिटी दिखाई गई वो एक सांड से जोड़ के दिखाई गई,
मर्दानगी वाली एकदम।
बिल्कुल, तो ये वही मर्दानगी वाली बात है। और इन सभी फिल्मों में, चाहे वो एम जी रामचंद्रन हो या रजनीकांत, जब वो सांड से जीत जाते हैं जलीकट्टू में, तो उन्हें अपनी प्रेमिका मिल जाती है, नायिका मिल जाती है। तो पूरे में यही एक भावना रही
है। और बहुत सारे फिल्म स्टार्स अभी के हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है लगातार।
बिल्कुल, तो पॉपुलर कल्चर में एक तरह से इस बात को शह दी गई है कि मर्द की मर्दानगी लड़ने से और इस तरह के कौशल से जुड़ी है, और औरतों को ये पसंद भी आता है। ये दोनों बातों को बहुत शह मिली।
जी, आपने बात की औरतों की, तो वो जिस तरह से शामिल होती हैं इस खेल में, वो कुछ अलग होता है पुरुषों के मुकाबले?
दरअसल ये भी बड़ा ही एक तरह से जेंडर की एक रेखा खींची है और उसमें बटा है, क्योंकि ये खेल है कृषि से जुड़ा हुआ, जो एक पोंगल का उत्सव होता है उसका हिस्सा बनता है ये खेल साल के शुरुआत में, और दक्षिणी जिलों में तमिलनाडु के ज्यादातर खेला जाता है। लेकिन इस पोंगल के उत्सव को ही दो अलग तरीकों से मर्द और औरत मनाते हैं। मर्द जलीकट्टू का खेल खेल के, तो उसमें सबसे अच्छा मर्द कौन? वो जो सांड को पछाड़ दे एक तरीके से। और सबसे अच्छी औरत कौन? औरत ये खेल नहीं खेलती है, औरत बनाती है चावल के आटे की रंगोली, जिसे वहां पर कोल्लम कहा जाता है। तो जिसकी कोल्लम का जो डिजाइन है सबसे बारीक होगा वो सर्वश्रेष्ठ औरत होगी। तो ये बड़ी ही अजीब बात है, पर अगर शादी का रिश्ता हो तो सर्वश्रेष्ठ मर्द ऐसे वाले हुनर का रखने वाला होगा, और जो सर्वश्रेष्ठ औरत है वो ये बारीकी वाले हुनर को रखने वाली होगी। तो किसी एक स्तर पर अगर देखा जाए तो ये खेल और उससे जुड़ी कहानियां और फिल्में औरतों और मर्द की एक छवि, जिसे कुछ लोग थोड़ी पुरानी सोच वाली छवि कह सकते हैं और थोड़ी संकीर्ण सोच वाली छवि कह सकते हैं, उसको आगे लेके आती है।
तो जैसा कि अभी आपने सुना, जल्लीकट्टू सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक सोच भी है। ये थी बीबीसी संवाददाता वंदना और दिव्या आर्य। दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ कार्यक्रम में अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया को कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है और उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाने के लिए कहा है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से आलोक पुतुल।
बिहार के माओवादियों पर पीएचडी करने वाली शोधार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया पिछले कई सालों से बस्तर के एक गांव में रह रही हैं, जहां उन्होंने सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से आदिवासियों की प्रताड़ना, फर्जी मुठभेड़ में उनकी हत्या और आदिवासी महिलाओं के यौन शोषण के कई मामलों को सार्वजनिक किया है, जिसके कारण बस्तर पुलिस मानवाधिकार आयोग से लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग तक के निशाने पर है। इन आयोगों ने अपनी जांच के बाद बस्तर में सुरक्षा बलों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यही कारण है कि पिछले एक साल में बस्तर पुलिस और उनके द्वारा बनाए गए संगठनों ने कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और पत्रकारों को बस्तर छोड़ने पर बाध्य कर दिया। सोमवार को ऐसे ही एक समूह ने बेला भाटिया के मकान पर हमला किया और उन्हें 24 घंटे के भीतर बस्तर छोड़ने का फरमान जारी करते हुए कहा कि अगर बेला ने बस्तर नहीं छोड़ा तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बेला भाटिया का कहना था कि पुलिस की उपस्थिति में भी उन्हें तब छोड़ा गया जब उन्होंने लिख कर दिया कि वे 24 घंटे में मकान खाली कर देंगी।
माजरा ये है कि पूरा वही अटैक हुआ है, उसका मकसद यही था कि हम मुझे यहाँ से हटाएं अभी, मतलब बहुत ही भयानक इसमें थे, पूरा घर जलाएंगे आपका, ये सब अच्छा था। फिर ये बोली की मैं अंदर जाके थोड़ा कपड़ा बदल के आती हूँ, तो मैंने कलेक्टर को बताया और फिर कलेक्टर ने थोड़ा पुलिस भी भेजा, कोर्ट भेजा, और फिर पुलिस के सामने फिर एक घटे तक ये सब कुछ चलता रहा, जिसमें वो लोग पूरा स्लोगन भी शाउट कर रहे थे, बेला भाटिया मुर्दाबाद।
इधर छत्तीसगढ़ में मानवाधिकार संगठन PUCL के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह ने आरोप लगाया कि बस्तर पुलिस के संरक्षण में असामाजिक तत्वों ने बस्तर में भय और आतंक का एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें आम आदमी असुरक्षित है।
छत्तीसगढ़ पुलिस के संरक्षण में अग्नि के लोगों ने जिस दुर्घटना बेला भाटिया घर पे की है वो बहुत शर्मनाक, लोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। ये पहले भी ये करते रहे हैं। इन्होंने पहले जो लीगल एड ग्रुप के लोग थे, वकील थे, शालिनी गिरा थी, ईशा खंडेलवाल थी, इनके साथ उन्होंने जबरदस्ती मकान खाली कराया, हमला किया, नारेबाजी की, और ये वही बेला भाटिया हैं जिनका पुतला अभी कुछ दिन पहले पुलिस जलाया था। छत्तीसगढ़ पुलिस या कल्लूरी की पुलिस जब उनके घर गई कलेक्टर के आवाज करने के बाद, तो उन्होंने उसको उसकी सुरक्षा नहीं दी, उल्टा उनसे लिखवा लिया 24 घंटे के अंदर मैं घर खाली कर दूंगी। जिम्मेदारी पुलिस की थी कि उसकी रक्षा कर दी, उन्हें रोका जाता, एक संवैधानिक काम है, कोई भी कहीं भी रह सकता है। वो बस्तर जगदलपुर के पास परपा गांव में रहती हैं, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पत्रकार हैं, उनके आर्टिकल्स लिखते हैं, रिपोर्ट छपती है। PUCL इस घटना की बहुत निंदा करता है और हम कोशिश करेंगे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
इस पूरे मामले पर हमने पुलिस अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन हमें उनका पक्ष नहीं मिल पाया। फिलहाल बेला भाटिया के समर्थन में मानवाधिकार संगठन मंगलवार को राज्य सरकार के आला अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं और उन्हें इस मामले में जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी उम्मीद है। लेकिन अब तक के अनुभव यही रहे हैं कि तमाम आलोचनाओं के बाद भी राज्य सरकार बस्तर पुलिस और उनके द्वारा बनाए गए संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती रही है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
कार्यक्रम में आगे सुनेंगे आप भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी देवयानी खोबड़ागड़े से एक विशेष बातचीत और आपकी चिट्ठियां तो होंगी ही आज, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ से चल रहे हैं भारत प्रशासित कश्मीर, जहां ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की ओर से बुलाए गए 72 घंटे के बंद की वजह से घाटी में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जैसे थम कर रह गई है। क्या है इस बंद की वजह, सुनिए श्रीनगर से आई माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
कश्मीर घाटी के सभी इलाकों में ऑटो रिक्शा, बसें, टैक्सी और मिनी बसें हड़ताल कॉल के कारण सड़कों से गायब रहीं, जिसकी वजह से आम लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सके। ट्रांसपोर्ट की सुविधा न होने के कारण जहां मुलाजिम अपने दफ्तर उन तक नहीं पहुंच पाए, वहीं छात्रों और दूसरे लोग श्रीनगर से बाहर दूसरी जगहों पर नहीं पहुँच सके। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात की जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं मिला।
प्रॉब्लम होगी, गाड़ी नहीं है, कोई नहीं, बीमार, हमारा फादर साहब बीमार है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, गाड़ी गई, ऑटो नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारे हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत जी, मुझे ट्राल जाना था, ट्राल से इधर उधर बहुत प्रॉब्लम, हमें कोई गाड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई अवेलेबिलिटी।
और हम जो सुबह से देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्टरों ने 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए ये हड़ताल की कॉल दी है, इससे लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह से ही लोग अपने घरों से बाहर ही निकल रहे हैं, लोग अब ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिनके एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं खासकर फाइनल ईयर के, उनको भी बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई लोगों के एग्ज़ाम भी छूट गए, कई लोगों के और भी जो टेस्ट्स थे वो भी छूट गए क्योंकि वो एवेन्यू पे ऑन टाइम पहुँच नहीं पाए।
वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जिस तरह से एकदम टैक्स में बढ़ोतरी की वो एक सही कदम नहीं है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुखिया अब्दुल कयूम कहते हैं,
गवर्नमेंट ने हम पर जबरदस्ती एक तो 6 महीने की हड़ताल पर थी, दूसरी तरफ उन्होंने हमें पैसेंजर वेलफेयर फंड गाड़ी 1200 रुपया फी गाड़ी जो कि नई गाड़ी पर था लागू, नई गाड़ी एक दफ़ा आती है उस पर लागू था, इन्होंने हमें सभी गाड़ियों पर चाहे मेटाडोर मिनी बस टाटा गाड़ी हो या सोमो हो या ऑटो हो सब पर अलग अलग रेट से पैसेंजर वेलफेयर लगाया है, से लगाए हम चाहते थे, हमने दिया था गवर्नमेंट को कि मेमोरेंडम कि हमारा ये वापस लिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट माना नहीं, इसलिए हम मजबूर हो गए 72 घंटे की कॉल।
श्रीनगर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिनमें बसें, ऑटो रिक्शा, मैक्सी कैब्स और मिनी बसें शामिल हैं की तादाद 45,000 के करीब है। आज शाम 72 घंटों की लगातार हड़ताल कॉल में नरमी करते हुए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 25 जनवरी तक अपने हड़ताल को मुलतवी किया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से बातचीत के लिए 25 जनवरी को बुलाया गया है, अब इस बातचीत के बाद ही तय हो पाएगा कि हड़ताल आगे जारी रहेगी या नहीं। माजिद जहांगीर, BBC हिंदी, श्रीनगर।
भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी देवयानी खोबरागड़े का नाम आपको याद होगा, वही देवयानी खोबरागड़े जो साल 2013 में तब चर्चा में आई थी जब न्यूयॉर्क पुलिस ने एक मामले की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। देवयानी तब न्यूयॉर्क में भारतीय राजनयिक थीं। वो आज बीबीसी हिंदी के दिल्ली दफ्तर आईं जहाँ उन्होंने अपनी किताब व्हाइट साड़ी और उससे पहले पेश आई दिक्कतों के बारे में बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से बात की।
वाइट सारी मॉडर्न दलित गर्ल जिसकी सोशल आइडेंटिटी इवॉल्व हो रही है, जो उसकी पर्सनालिटी की क्लैशेस हैं, जैसे उसकी सोशल आइडेंटिटी और उसकी खुद की पर्सनालिटी, उसकी खुद की फीलिंग्स, उसमें जो क्लैशेस हैं, सो उसके बारे में ये स्टोरी है। उसकी जो आइडेंटिटी का प्राइड है, दलित गौरव है, उसके ऊपर है और वो फिर उसे कैसे अपनी बाकी आइडेंटिटीज़ के साथ उसे कैसे नेविगेट करती है, उस बारे में है ये।
समाज में दलित महिलाओं को किस तरह की कठिनाइयों का सामना है, क्या इसमें रिफ्लेक्शन है किताब में?
जी बिल्कुल, कि जो दलित महिला है वो डबल डिस्क्रिमिनेटेड है, लेकिन इसके बारे में
एक महिला होने का और दूसरा दलित,
और दलित होने का, तो ये दोनों ही उसे फेस करना होता है, और इसके साथ ही जैसे उसकी परवरिश होती है बढ़ती है, वो ये दोनों आइडेंटिटीज उसको पता है कि उस पर क्या इम्पैक्ट होता है उसके लाइफ पे, और इस पर ज़्यादा नैरेटिव है नहीं इस पर। दलित लिटरेचर में भी, दलित मूवमेंट में भी जो लड़कियों का स्थान है, जो उन्हें जो कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती हैं, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी डिफ़िकल्टीज़ है, उसके बारे में ज़्यादा डिबेट नहीं होता है।
इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
ये जो प्लॉट है वो तो ऑफ कोर्स मैंने इट्स इमेजिनरी, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हैं और जैसे उसमें जो इंसिडेंट्स हैं वो मेरे ऑफ कोर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उसमें।
जब भी कोई पहला नॉवेल लिखता है, पहली शॉर्ट स्टोरी लिखता है, उसमें अपनी आप बीती भी उसकी होती है तो क्या आप जब सर्विस में आए या उससे पहले जब एज अ महिला, दलित महिला बड़ी हो रही थी तो स्कूल में गई, कॉलेज में, आपको भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन वगैरह फेस करना पड़ा?
देखिए अभी ऑफ कोर्स अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एजुकेशन से काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन कम हो गई है और अलग स्वभाव की हो गई है, लेकिन ये बात सच है कि हर जनरेशन को उनकी कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी ही पड़ती है, ऐसे नहीं है कि नहीं करनी पड़ती।
आपके बारे में ऐसा लगता है मुझे कि आप तो अच्छी नौकरी में हैं, अच्छे परिवार से आती हैं, और एक तरह से कहें कि कुछ लोग कह रहे थे कि एलीट दलित है, तो आपको भी फेस करना पड़ा है?
ऑफ कोर्स, ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक सा आर्ग्यूमेंट हो गया कि अगर आप यू नो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो गए हो, एजुकेटेड हो गए हैं, तो बायसेस एंड स्टेरियोटाइप्स एग्जिस्ट। बट मैं ये समझती हूँ कि अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वुमन हु हैज़ कम फ्रॉम सर्टन बैकग्राउंड, दैट आई नीड टू स्टैंड अप फॉर अदर वुमेन, एंड अगर मैं ही पीछे हट जाऊँ और मैं अपनी जो ये सोशल स्पेस है वो छोड़ दूँ, स्पेशली डिजिटल स्पेस, तो फिर तो ये चलता रहेगा। सो यू हैव टू स्टैंड अप एंड फाइट बैक एंड फेस इट।
क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि आप तो प्रिविलेज्ड हैं, आप तो रिजर्वेशन से आए हैं, तो
आप देख लीजिए जाके ट्विटर पे क्या कमेंट्स है।
आप विदेश मंत्रालय में हैं, आपकी पोस्टिंग बाहर भी हुई है, होगी आगे भी, तो जब लोग आपसे पूछते होंगे कि 21वीं सदी में भी भारत में एक बड़ा समुदाय है जिसके खिलाफ भेदभाव है, तो कैसे उनको समझाते हैं?
ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं अपने देश को बाहर रिप्रेजेंट करती हूँ, और जब भी ऐसी बात होती है मुझसे तब मैं हमेशा उन्हें ग्लास फुल दिखाती हूँ, हाफ फुल नॉट हाफ एम्प्टी। जैसे अगर मैं यहाँ हूँ एक दलित महिला आपके सामने, तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रोग्रेस हुआ है और आगे भी प्रोग्रेस हो रहा है, तो आपने पॉजिटिव्स को देखना है।
तो पॉजिटिव स्टोरी बताती है
बिल्कुल,
लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको आप स्वीपिंग अंडर द कारपेट?
नो, वी कांट डू दैट। वी से ओके दैट इट इज देयर, बट व्हिच कंट्री डजंट हैव डिस्क्रिमिनेशन?
पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जैसे रोहित मिला का केस हुआ और भी इस तरह की, उसके बाद एक सोशल मूवमेंट आया दलितों में, राजस्थान और यूपी में नए यंग दलित लीडर्स जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं वो उभर के आए, उसको किस तरह से देखते हैं?
That shows that the Dalit movement is alive and it is doing well and I'm very happy. अच्छी बात है कि वो
हिंदी में बात कर रहे हैं, थोड़ी सी हिंदी में भी बात कीजिए। हमारी हिंदी ऑडियंस को थोड़ा समझ में आए।
माफ कीजिए, मेरी हिंदी थोड़ी मराठी बम्बई हिंदी है तो इसलिए थोड़ा। मैंने ये स्टोरी भी, जब इस स्टोरी में मैंने काफ़ी जो हमारा जो दलित सब कल्चर है या उसके बारे में काफ़ी प्राइड के साथ लिखा है, ताकि ये सोशो कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे कल्चर के, हमारे मूवमेंट के, हमारी स्ट्रगल और उसको बहुत सारे वाइड ऑडियंस तक ले जाया जाए।
2013 में जो आपके साथ हुआ न्यूयॉर्क में, उसके बाद क्या आपको लगता है कि आपके करियर में कहीं से रुकावट आई है या अब वो उस तरह का करियर नहीं हो पाएगा जैसे कि आप आशा कर रही थी?
इस पर मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगी।
भारतीय राजनयिक देवयानी खोबड़ागढ़ से बात कर रहे थे जुबैर अहमद, और अब बारी है आपकी चिट्ठियों की।
आपकी राय, आपकी राय में मैं आपके साथ हूं सुमिरन, और इस वक्त मेरे साथ हैं बीबीसी हिंदी सेवा के संपादक मुकेश शर्मा। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू, शुक्रिया।
तो कैसे शुरू की जाए, चिट्ठियाँ मैं कंप्लेंट्स वाली मतलब शिकायत वाली चिट्ठियाँ पढ़ूँ या तारीफ पहले आए?
चलिए पहले शिकायतें सुननी चाहिए, क्योंकि तारीफ तो अच्छी लगेगी
आगे तारीफ की।
नहीं, पहले शिकायतें सुलझाएं।
तो पहला पत्र हाथ से लिखा है, वो लिखा है अगम प्रकाश ने। ये है लेक्चरर राधा स्वामी आदिवासी इंटरमीडिएट कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हरदा मध्य प्रदेश से ये लिखते हैं। और बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने लिखा है कि मैं पिछले 35-40 वर्षों से बीबीसी रेडियो का श्रोता हूँ, 25-20 खत भी लिख चुका हूँ, लिखता रहूँगा क्योंकि आप लोगों से नाता नहीं टूट सकता। 1 जनवरी 2017 से आपका ट्रांसमिशन बहुत खराब आ रहा है, कुछ ऐसे कि मैं अपना रेडियो ट्रांसिस्टर लेकर इधर उधर घूमता हूँ।
देखिए, इतने पुराने श्रोता हैं और उनकी शिकायत है, तो इसको पूरी गंभीरता से लिया गया है। और अगम प्रकाश जी को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मामला है ट्रांसमिशन सही नहीं आने का, इससे पहले भी कुछ लोगों ने अभी पिछले दिनों में उठाया है। इसको हमने लंदन में जो टेक्निकल टीम है उसको फॉरवर्ड कर दिया है और वो इसको देख रहे हैं कि, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें अगर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी अगर फ्रीक्वेंसी में, तो वो भी किया जाएगा, पर इसको गंभीरता से देखा जा रहा है।
वहीं दूसरी चिट्ठी लिखी है अरुण कुमार छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। वो लिखते हैं कि 20 जनवरी को उन्होंने दिन की शुरुआत सुशीला सिंह के कार्यक्रम के साथ की, बहुत अच्छा लगा। सुशीला जी की आवाज़ की मधुरता और शब्दों की निरंतरता और प्रस्तुति की कुशलता सच में मन मोह लेती है।
क्या बात है, कितने जादुई तरीके से, जादुई शब्दों में इन्होंने भी लिखा है, सुशीला जी की आवाज़ की मधुरता, शब्दों की निरंतरता और प्रस्तुति की कुशलता। क्या बात है, सुशीला को जरूर बताएंगे और पक्के तौर पे सुशीला को काफी अच्छा लगेगा।
जी बिल्कुल। और इन्हें भी रेहान जी की जो कोहिनूर हीरे पर विवेचना थी वो बहुत अच्छी लगी, और वो ये कहते हैं कि अगर 20 मिनट कर दिया जाए विवेचना को तो बहुत बढ़िया होगा।
क्या बात है। देखिए, अगर विवेचना 20 मिनट होगी तो फिर बाकी रिपोर्टों का समय थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन उसमें से मुझे पक्के तौर पे यकीन है, और जिस तरह की चिट्ठियों की भाषा है, और लग रहा है कि सबको कार्यक्रम अच्छा लगा, ये बहुत जान के हम लोगों को भी अच्छा लगा, रेहान जी को भी ये जान के बहुत खुशी हुई कि ये कार्यक्रम सबको पसंद आया है। और हमारी कोशिश होगी इसी समय के दायरे में और अच्छे से अच्छे और इंटरेस्टिंग रुचिकर विषय जो हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं।
चलिए, एक और चिट्ठी है, ईमेल है। मेरा नाम आमिर खान है।
आमिर खान ने चिट्ठी लिखी है?
हाँ, ये दिल्ली के आमिर खान है।
अच्छा।
मेरा नाम है आमिर,
हमारे
खान
लिए
है।
फिर भी उतने ही
बिल्कुल
है।
बिल्कुल, मेरा नाम आमिर खान है, मैं दिल्ली के सेवा कुटीर में रहता हूँ। पिछले 4 साल से बीबीसी हिंदी सुनता आ रहा हूँ। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मुझे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। दुनिया जहाँ, विवेचना जैसे प्रोग्राम दिल को छू लेते हैं। मुझे दिव्या आर्य, रिहान फजल, निखिल रंजन और सभी लोग अच्छे लगते हैं। ये मेरा पहला मेल है, आशा करता हूँ आप इसे जरूर शामिल करेंगे। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ।
अरे वाह, ये बहुत ही युवा हमारे श्रोता हैं, और इन युवा श्रोता की चिट्ठी आपने शामिल की, बहुत अच्छा किया सुमिरन। और बहुत ही, जिसको कहते हैं, दिल को छू लेने वाली बातें होती हैं जब हमारे श्रोता ये लिखते हैं कि आज जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं, या इस तरह की जो भाषा होती है, हम्बलिंग जिसको कहते हैं, हम लोगों को बहुत ही भावुक भी करती हैं ऐसी चिट्ठियाँ, और ज़िम्मेदारी का भी एहसास कराती हैं कि एक प्रसारक के तौर पे हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारी कोशिश है कि हम उसको इसी तरीके से निभाते रहें।
जी बिल्कुल। और अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, तो चलते चलते फिर मुकेश जी पता बता दीजिए।
जी, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
खेल के मैदानों में क्या हलचल है बताने के लिए राखी शर्मा मेरे सामने स्टूडियो में बैठी हुई हैं।
जी, इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 2-1 से हराने के बाद अब भारतीय टीम की नज़रें 26 जनवरी से इसी टीम के खिलाफ शुरू हो रही 3 T20 मैचों की सीरीज पर लग गई हैं। हालांकि भारत ने इस सीरीज से अपने 2 अहम खिलाड़ी आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को आराम दे दिया है। इन दोनों स्पिनर्स की जगह अमित मिश्रा और परवेज रसूल को शामिल किया गया है। अमित मिश्रा ने पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 15 विकेट झटके थे। वहीं रसूल करीब 3 साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। और बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट की, तो भारत के लियांडर पेस अपने मिक्स डबल्स पार्टनर मार्टिना हिंगिस के साथ क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। इस भारतीय स्विस जोड़ी ने दूसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया की केसी डेलाकुआ और मैट रीड की जोड़ी को 54 मिनट में सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से मात दी। पेस और हिंगिस ने शुरुआत से ही मैच में दबदबा बनाए रखा, लेकिन विपक्षी टीम को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। इसके अलावा भारत जो विश्व के नंबर 1 और 2 खिलाड़ी हैं एंडी मरे और नोवाक जोकोविच, उनके बाहर होने के बाद अब स्पेन के रफाल नडाल की जीत का सिलसिला जारी है। ये भी मेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर सुनते हैं निखिल रंजन से।
बीबीसी समाचार। भारतीय राज्य तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को लेकर विरोध कर रहे लोगों को हटाने के दौरान हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संसद में देरी से आम बजट पेश करने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में सीरिया के मुद्दे पर एक शांति वार्ता हो रही है। बांग्लादेश के एक शख्स को ये पता लगने के बाद कि वो किसी और की जगह उम्र कैद की सजा काट रहा है, जेल से रिहा कर दिया गया है। और यमन की सरकारी सेना ने कई दिनों की लड़ाई के बाद लाल सागर पर मोखा पोर्ट तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। भारत में बजने वाले हैं रात के 8। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी मदद कर रहे थे तिलक भाटिया। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को विदा दें, लेकिन bbchindi.com है आपके साथ। नमस्कार।